हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 40। कृपया इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीताम्बरधारुण बिम्बफलाधरोष्ठा, पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा, कृष्णात्परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे, वेदे साङ्गपत् क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा, देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी, पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम्, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 40। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषु निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययन्महत्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषु निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषु निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषु निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषु निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषु निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। शब्दों का अर्थ देखिए, इदं भागवतं नाम, इदं मना इस भागवतं अर्थात भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथा वाली इस ग्रंथ को, नाम अर्थात नामक, पुराणं ब्रह्म संहितं, पुराणं मतलब पुराणों में या वेदों के अनुपूरक यानी ब्रह्म संहितं का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण का अवतार। उत्तम श्लोक अर्थात भगवान का चरितम यानी कार्यकलाप। चकार भगवान ऋषु, चकार मतलब संकलित किया, भगवान अर्थात भगवान के अवतार ऋषि अर्थात व्यास देव ने, निःश्रेयसाय लोकस्य, निःश्रेयसाय का मतलब होता है परम कल्याण के लिए, लोक किसके, लोकस्य यानी लोगों के, धन्यम स्वस्त्ययनं महत्। धन्य मतलब पूर्णतया सफल या धन्य है, स्वस्त्ययनं इसका मतलब होता है सर्व आनंदमय, और महत का मतलब होता है परिपूर्ण। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, यह श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्यावतार है, जिसे भगवान के अवतार श्री वेदव्यास जी ने संकलित किया है। यह समस्त लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का साहित्य का अवतार है, अतएव यह उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवतम की पूजा उसी समान करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान सच्चिदानंद रूप हैं, उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवतम भी है। हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से परब्रह्म कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। पुरी में भगवान श्री चैतन्य के दर्शनार्थ जितने भी लोग आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भागवत व्यक्ति से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भागवत व्यक्ति स्वरूप सिद्ध प्रमाणिक गुरु है और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उसी से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं। सतगुरुदेव महाराज की जय हो। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, श्लोक नंबर 39 में, अति धन्य भगवन्तैत्थं यत्वासुदेवे किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात् मकमात्मभावं न यत्र भूय परिवर्त उक्री। कि वास्तव में यदि किसी को आनंदित होना है, कोई चाहता है कि मैं वास्तव में आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आनंद तो जीव मात्र का लक्ष्य है, हर कोई चाहता है, लेकिन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आनंद की एक परिभाषा बना देता है और उस आनंद को अर्जित करने के लिए अपने मन मति अनुसार एक तरीका बना देता है कि इस तरह से मुझे आनंद हासिल करना। लेकिन वास्तव में यदि आनंद हासिल करना है तो फिर क्या करना है, तो ये इन्होंने बताया, धन्य भगवत भगवंत इत्थम यद वासुदेव अखिल लोकनाथ। क्योंकि वासुदेव भगवान जो कि ऋषिकेश के नाम से जाने जाते हैं, वही इंद्रियों के स्वामी हैं और उनको प्रसन्न करने से ही हम स्वयं को आनंदित कर सकते हैं, ना केवल इंद्रियों को बल्कि सर्वात्मकम आत्मभूता, कि समस्त लोगों की आत्मा भी आनंदित हो जाएगी अगर वो भगवान वासुदेव को के विषय में श्रवण करते हैं, उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं और बहुत ही सुंदर बात बताई, न यत्र भूय परिवर्त उग्रे, इस भयानक जगत में शास्त्र ने इस संसार को कहीं पर भी, चाहे आप भागवत गीता ले लो चाहे भागवतम ले लो, कहीं भी ये नहीं लिखा कि इस संसार में आनंद मिलेगा, या इस संसार में आप आनंद की चेष्टा करो, या इस संसार में कोई ऐसा कार्य है जिस जो करने से आपको आनंद मिलेगा, है ही नहीं। इसमें क्या, देखो भागवत क्या कहती है, न यत्र भूय परिवर्त उग्रे, कि ये जो संसार है वो उग्र है, भयानक है, खतरनाक है, इसमें आनंद नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना, फिर आप अगर भगवान की लीलाएं सुनोगे तो ऐसी जगह चले जाओगे कि वापस इस उग्र संसार में आना नहीं पड़ेगा। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं कि दुखालय अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है, अशाश्वत है, तो क्या करो, भगवान कहते हैं कि यद गत्वा ना निवर्तन्ति तद धाम परम मम, तो फिर तुम ऐसा करो, कोई कार्य ऐसा करो जहाँ पर जाने के बाद तुम्हें वापस ना आना पड़े, यद गत्वा ना निवर्तन्ति। 15.7 में भगवान ने बताया। अभी यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि फिर हम कार्य कैसा करें, तो यहाँ पर बहुत ही अत्यंत सुंदर में सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि फिर आपको भगवान वासुदेव के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, उनके विषय में सुनना चाहिए। यदि आप उनके विषय में श्रवण करोगे तो आपको आपकी आनंद आत्मा भी आनंदित हो जाएगी, आपको इस भयानक जगत में भी वापस आना नहीं पड़ेगा और समस्त दुख और क्लेश समाप्त हो जाएंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि ठीक है, हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, उनके विषय में जानेंगे, लेकिन किधर से जाने, शास्त्र तो अथा है, वेद और शास्त्र तो बहुत सारे हैं, तो इतने सारे हमारे पास इतना समय नहीं है, न ही इतनी बुद्धि है, क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं और कलयुग के प्राणियों के विषय में पहले से ही बता दिया कि वो प्राये अल्प आयुष्य सभ्य कला वस्मिन युगे जना, एक तो बेचारे की आयु इतनी थोड़ी है, जो कलयुग के लोग हैं उनकी आयु इतनी थोड़ी है कि मतलब सोच भी नहीं सकता है कि सारे वेदों को अध्ययन करें, इतना सोचने के लिए भी उनके पास उसके पास समय नहीं है। और दूसरा ये मंदा सुमंद, मतलब एक तो बुद्धि इतनी मंद है कि जो पढ़ेगा उसमें से पढ़ेगा कुछ और समझ में कुछ आएगा, बुद्धि इतनी मंद है और कार्य भी नहीं कर सकता है, मतलब शरीर भी मंद है, वो भगवान की भक्ति के कार्य में आलस्य उत्पन्न होता है इतना कि शास्त्र अध्ययन करना या भगवान का पवित्र नाम का जप करना, श्रवण करना, उसमें इतना आलस्य, भौतिक चीजों करने में 3-3 घंटे तक अगर एक ना फिल्म देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो उसमें उसको आनंद आता रहेगा, उसमें उसको बोरिंग भी नहीं होगा और थकावट भी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी क्लास में चला गया और अगर कोई मेरे जैसा वक्ता बैठ गया, फिर सबका मुंह उतर जाता है कि अरे ये तो पता नहीं कब क्लास खत्म होगी, पूरा 1.5 घंटा चलेगी ये क्लास, और है ना मतलब ये इतनी मंद है कि हम श्रवण करने के लिए भी है ना अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो फिर अगर सुन भी लेते हैं, चलो ठीक है, कोई अगर सुन भी लेता है तो क्या होता है, वो उसमें जजमेंट नहीं कर पाता है कि क्या सही है। अभी कभी किसी का सुन लिया, कभी किसी का सुन लिया, कभी तो समझ में भी नहीं आता है कि क्या सही है, मैं कौन सा मार्ग पकड़ूं। और अगर कोई मार्ग भी पकड़ लेता है तो उसके जीवन में इतने उपद्रव है, इतनी डिस्टर्बेंस है, इतने मतलब भौतिक क्लेश इतने तेज है कि वो उस मार्ग को भी सही तरह से फॉलो नहीं कर पाता है, सारे नियम्स को फॉलो नहीं कर पाता है। तो ऐसे बेचारे कलयुग के प्राणी की भी, वाकई में कलयुग के प्राणी को बेचारा कहना चाहिए कि ना उसको भगवत प्राप्ति इतनी सरलता से भी प्राप्त है तो भी वो नहीं कर पाता है। बाकी जितने भी युग हैं उसमें कितना मुश्किल से भगवान की प्राप्ति, बहुत बहुत मुश्किल से मिलती है, और वही भगवत प्राप्ति कलयुग में हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु ने कितना सरल कर दिया कि बस महामंत्र का उच्चारण करना है। और श्रील प्रभुपाद ने तो हद कर दी, 64 में से सिर्फ 16 माला करके दे दी कि बेटा कुछ तो करो, और हमसे वो 16 माला भी कठिन लगती है, ऐसा लगता है कि ये समाप्त नहीं हो रही, मैं सुबह से 16 माला करना शुरू करती हूँ और फिर खत्म नहीं हो रही होती है कि 16 माला कंप्लीट करना है, श्रवण करना, कितना इजी करके दे दिया भगवान को प्राप्त करना। और दूसरा ये कि और कोई तरीका भी तो नहीं है ना, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर आप चाहते हो कि आप आनंदित हो और अगर आप भौतिक संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हो तो आपके पास एक ही तरीका है कि भगवान के विषय में श्रवण करो। तो अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि कहाँ से श्रवण करें, है ना, ऑथेंटिक क्या है जहाँ से श्रवण करने के बाद हमको परफेक्ट चीज मिलेगी। तो इसका आंसर आज हमें सुत गोस्वामी देते हैं। सुत गोस्वामी हमारी इस दुविधा को यहाँ पर शांत करते हैं और कहते हैं, देखो और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है और किधर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इदम भागवतम नामा, इदम माना इस, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं ना उसी भागवतम के विषय में बात कर रहे हैं। इदम भागवतम नाम, भागवतम का नाम होता है, भागवतम जिसका नाम है उस शास्त्र, भागवतम का मतलब होता है भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथा वाला ग्रंथ, है ना। भगवत यानी भगवान का और भागवत यानी भगवान और उनके भक्तों की कथाओं वाला ग्रंथ, भगवत गीता यानी भगवान का गीत, और भागवतम का मतलब होता है वह ग्रंथ जिसमें भगवान और उनके भक्तों की कथाएं बहुत सारी लिखी हो, ऐसे ग्रंथ को क्या बोलते हैं, भागवतम। वो भागवतम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा इदम भागवतम नाम, ये वाला शास्त्र जिसका नाम भागवतम है वो कौन सा है, पुराणम ब्रह्म संहितम। पुराणम का मतलब होता है, अब पुराण का मतलब होता है जो पूरा करे। अब देखो वेद तो बहुत सारे हैं, शास्त्र तो बहुत सारे हैं, यानी कि जिस वो शास्त्र, पुराण का मतलब होता है पूरा करने वाला, जिसमें उसका पूरा का पूरा निचोड़ डाल दिया गया, तो ये भागवतम महापुराण है। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया पुराणम ब्रह्म संहितम, ब्रह्म संहितम। अब देखो श्रील प्रभुपाद ब्रह्म संहितम का क्या मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार। अगर कोई निराकारवादी होगा तो क्या कहेंगे कि ब्रह्म संहितम जिसमें निराकार भगवान, लेकिन क्योंकि श्रीमद् भागवतम को यदि आप खोलेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक आपको केवल कृष्ण ही कृष्ण नजर आएगा। इसका मतलब होता है कि यह कृष्ण ही ब्रह्म संहितम है, ये भगवान के विषय में सुन रहे हैं तो वो ब्रह्म जो है वो भगवान कृष्ण ही है, उनसे ही ब्रह्म निकला है। तो क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कृष्ण के अतिरिक्त, अभी हमने शुरू से पढ़ा केवल कृष्ण, उसके बाद अवतार आए वो भी कहा गया कि ये भगवान केशव देरता नरहरि रूपा। किसी में देखो दसवां अवतार की जब हम कथा सुनते हैं ना तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं आता। दशावतार के विषय में किसी को पता है, अभी हम लोगों ने तो 22 अवतार पढ़े, लेकिन जो जयदेव गोस्वामी ने दशावतार के विषय में लिखा उसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अवतार उन्होंने गिना ही नहीं, उन्होंने हर अवतार के साथ उनका नाम जोड़ा और ऐसे कहा केशव दीरिता वामन रूपा, केशव दीरिता सुकर रूपा, केशव दीरिता भृगुपति रूपा, केशव दीरिता राम स्वरूप। यानी कि ये सारे केशव का मतलब होता है जो भगवान श्री कृष्ण, तो ये बताना इसका मतलब क्या है कि वास्तव में कृष्ण कोई अवतार नहीं है, कृष्ण तो अवतार ये बाकी सब उसके अवतार है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है वो ब्रह्म संहितम है और यहाँ पर उसका मतलब लिखा गया है भगवान श्री कृष्ण का अवतार, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। और उत्तम श्लोक चरितम, ये उत्तम श्लोक का क्या मतलब होता है बताए, उत्तम श्लोक भगवान को कहते हैं। क्यों कहते भगवान को, क्योंकि भगवान की स्तुति जो है वो उत्तम श्लोकों के जरिए की जाती है, इसलिए भगवान का नाम भी है उत्तम श्लोक। ये हम पढ़ते हैं ना डेली श्लोक में, जैसे श्रीमद् भागवतम 1.2.18 में नष्ट प्रायेषु बद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का यहाँ पर मतलब लिखा दिव्य स्तुतियों के जरिए, यानी वो भगवान जिसकी भक्ति जो है, जिसकी पूजा जो है वो दिव्य श्लोकों के जरिए की जाती है। भक्तिर भवति नैष्ठिकीम, क्यों? क्योंकि उसके विषय में जब हम पढ़ते हैं, उसके विषय में सुनते हैं, ऐसे भगवान के विषय में, तो हमारे हृदय में भक्तिर भवति नैष्ठिकी, नैष्ठिकी अचल भक्ति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। वरना तो क्या, जब तक हम भगवान के विषय में सीरियस होकर श्रवण नहीं करेंगे तो हम भले भगवान के भक्त भी बन जाएंगे, लेकिन वो जो नैष्ठिक है ना, भक्ति के अंदर जो दृढ़ता है, जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, वो तब तक नहीं आएगी जब तक कि हम भगवान की इस उत्तम चरित्र के विषय में, यहाँ पे भगवान उत्तम चरितम चकार, चरितम का मतलब होता है कार्यकलाप, यानी कि भगवान ने इतने सुंदर सुंदर कार्य किए हैं और श्रीमद् भागवतम में हमें वो सब पढ़ने को मिलेंगे। और चकार का मतलब होता है संकल्प। अब ये आया कहाँ से श्रीमद् भागवतम, जिसके विषय में ये कह रहे हैं इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक संहितम, कि ये जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान के विषय में बताने वाला एकमात्र प्योर ग्रंथ है। और यही है ना, भगवान के चरित्र, भगवान की लीलाओं के विषय में, भगवान के शुद्ध भक्तों के विषय में आपको बताएगा। तो फिर यह प्रश्न उठता है ना कि ये फिर आया किधर से है, तो यहाँ पर बता रहे हैं चकार यह संकलित किया गया है, यानी कि जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उनमें से जो उनका पका हुआ फल है, जैसे हमने पढ़ा था ना निगम कल्पतरुकलितम फलम, ये समस्त जितने भी वेद हैं उनके वेदिक वृक्ष का पका हुआ फल है। और आया किधर से है, शुक मुखाद अमृत द्रव संयतम, ये शुक देव गोस्वामी के मुख से निकला है। लेकिन ये संकलित किसने किया था फल, मतलब एक समझो ये बीज किसी ने लगाया और उसके बाद उसने मीठा करके शुकदेव गोस्वामी ने हमें दिया। तो बीज लगाया किसने, यहाँ पर बता रहे हैं चकार भगवान ऋषु, ये चकार यानी संकलित किया। भगवान का मतलब होता है भगवान की अवतार है, वो कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि भगवान के विषय में बता सके, क्योंकि भगवान स्वयं साक्षात यदि स्वयं संसार में आते हैं तो ही अपने विषय में बता सकते हैं, क्योंकि भगवान के पहले कोई नहीं था तो फिर है ना भगवान के विषय में कोई कैसे बता सकता है। भगवान खुद अगर चाहे तो बोलते है ना से जाने जे हो जान देहो जनाए, कि भगवान के विषय में वही जान सकता है जिसे वो स्वयं जनाना चाहते हैं, जान जनवाना चाहते हैं कि भाई ये जान जाए मेरे विषय में। तो भगवान बताते हैं कि उन पर मैं कृपा करता हूँ, उनके हृदय में ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित कर देता हूँ और उन वो मेरे विषय में जान पाते हैं। और यह भागवत महापुराण भगवान ऋषि, स्वयं भगवान जो है, ऋषि का मतलब होता है वेद व्यास जी ने, क्योंकि श्रीमद भागवत महापुराण वेद व्यास जी ने संकलित किया है। और निःश्रेयसाय यानी कि परम कल्याण के लिए। अब उनको क्या जरूरत पड़ी थी भगवान को कि वो ऋषि बनकर संसार में आए, और ये श्रीमद् भागवतम और अन्य जितने भी पुराण लिखे, स्पेशली श्रीमद् भागवतम के विषय में यहाँ लिखा है कि वो उन्होंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि वो भगवान है, और भगवान का एक गुण है कि वो कृपालु है, है ना, वो सबका कल्याण करना चाहते हैं। और जानते हैं भगवान कि जब तक जीव मात्र को श्रीमद् भागवतम नहीं प्रदान किया जाएगा तब तक है ना उनका कल्याण नहीं होगा। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है फिर उन्होंने इतने सारे वेद क्यों लिखे, जब कल्याण आपका केवल श्रीमद् भागवतम से ही होना है तो दूसरे ग्रंथ तो लिखने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन इसलिए लिखिए क्योंकि अगर आपके पास चार चीजें होंगी ना या ज्यादा चीजें होंगी तो उसमें से आप ये ना डिसाइड करोगे कि इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। एक ही चीज होगी तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, लेकिन अगर जैसे आप जीव के अंदर भी अलग अलग इच्छा होगी, हर कोई जीव तो ये नहीं चाहता है कि मैं भाव बंधन से छूट जाऊं और मेरी आत्मा आनंदित हो। जीव जब तक देहात्म बुद्धि में रहना चाहता है तब तक उसको देहात्म बुद्धि के अनुसार, क्योंकि उसमें कर्तव्य है, जैसे हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 2, एक अत्यंत ही बहुत ही सुंदर रोमांचक एक श्लोक हमने पढ़ा था, धर्म प्रोषित कै तवोत्र परमो निर्मात्सराणाम सताम। कि ये जो श्रीमद् भागवतम है वो बिल्कुल समस्त केतव को, जितने भी भौतिक विचार हैं कि आपको अगर ये चाहिए तो ये प्राप्त करने के लिए इसकी पूजा करो, ये प्राप्त करने के लिए ये करो, इसको प्राप्त करने के लिए ये मंत्र पढ़ो और ये मंत्र पढ़ो, ये समस्त प्रोजित कैतवोत्र परमो, समस्त केतव जितने भी कपट हैं, जितने भी केतव है उससे परम है निर्मत शरणाम सताम। वो साधारण व्यक्तियों के समझ में बात भी नहीं आएगी, केवल भक्त जो हैं, जो निर्मत्सर हैं, यानी किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, केवल वही समझ सकते हैं। और वास्तव में जानने के योग्य यही है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु विशदम तापत्रयम मूलन, के वास्तव में जानने की चीज वही है जिससे आपके समस्त त्रिय तापों का सर्वनाश हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कोई भी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, अगर आपकी त्रिय तापों का नाश नहीं हो रहा है, हृदय को, आत्मा को आनंद और आह्लाद प्राप्त नहीं हो रहा है और आपकी अज्ञानता नष्ट नहीं हो रही है, भगवान के साथ संबंध निर्माण नहीं हो रहा है, तो वो समझो उस शास्त्र के अंदर जरूर कोई अवगुण है, क्योंकि वो आपको आपके वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंचा रहा है। उसमें केतव है और केतव का मतलब हमने बताया था, द्विसंग कहिए केतव आत्मवंदना कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। यदि कृष्ण और कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त और कोई कामना आपके हृदय में उत्पन्न हो रही है तो वो केतव है। और हम दूसरे शास्त्र जब पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम के अलावा जो भी वेद और शास्त्र है, उसमें हमें भौतिक इच्छाओं के पूर्ण होने की या स्वर्ग की कामना के विषय में भी बताया जाता है, तो फिर ये तो कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्राप्ति नहीं हुई, तो इसका मतलब है वो केतव है। और आगे बताया था श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरे, है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण तो वेद व्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में जब उन्होंने सारे शास्त्र लिख लिए, अब यहाँ पर पता चला कि क्यों लिखे थे, क्योंकि पहले लोगों का, जितने जितने जीव हैं उनका अलग अलग विचार होता है, अलग अलग धारणा होती है, अलग अलग इच्छा होती है, तो उनको सबको बताया कि भाई ये भी इससे ये पूरा होगा, ये करने से ये पूरा होगा। लेकिन यदि आप वास्तव में अपने त्रिय तापों को नाश करना चाहते हो, वास्तव में भगवान के साथ अपने संबंध का निर्माण करना चाहते हो, तो कहा गया किम वा परैरीश्वरे, फिर दूसरा कोई शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हृदय के अंदर प्रेम की उत्पत्ति किससे होगी, सद्यो हृदय वरुद्रेते तकृति भी। जो पवित्र भक्त है, जब केवल शुश्रूषु तत्क्षणात् केवल सुनने की इच्छा मात्र भी कर देता है श्रीमद् भागवतम की हो, तो उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ आता है। तो यहाँ पर बताया कि भगवान ने ऋषि का अवतार लिया क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जीव जो मोह माया में फंसा हुआ है, जो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है, जो दुखों भरे इस भवरोग इस उग्र जगत में फंसा हुआ है, उनका कल्याण हो। इसलिए यहाँ पर बताया निहि श्रेयसाय, कि ये परम कल्याण अगर कोई ग्रंथ है तो केवल श्रीमद् भागवतम है। और लोकस्य धन्यम स्वस्य यन महत, कि लोकस्य धन्यम ये किसके कल्याण के लिए, समस्त लोगों के। वास्तव में ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा हमारे पास ये गॉड गिफ्ट है, ये भगवान की कृपा है कि ये मनुष्य जन्म में कृष्ण के साथ संबंध निर्माण करना अत्यंत ही सरल है। हम मनुष्य जन्म लेकर इस बात का आपके ऊपर आपको अधिकार मिल जाता है कि आप भगवान की डायरेक्ट से सेवा करो, है ना। विग्रह पूजा कर सकते हैं, भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं, बाकी जो योनियां हैं उसमें चाह कर भी नहीं कर सकते। यदि कोई चाहे, अगर कोई कुत्ते की इच्छा भी हो कि चलो किसी तरह से उसका सत पिछले जन्मों का कोई सत्कर्म जाग जाए और उसको याद आ जाए कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति है, तो भी उसको कोई मंदिर में पुजारी बनकर सेवा करने नहीं देगा कि आंटी के आप भी बैठ के यहाँ पर भगवान की सेवा करो, या आप उसका कोई घर नहीं होगा जहाँ पर वो एक विग्रह स्थापन कर सके या बैठ के भागवतम का पाठ पढ़ सके, वहां पर भागवतम की क्लास होगी तो भी उसको तो लात मार के भगा दिया जाएगा। तो ये मनुष्य जीवन इतना सुंदर है कि इसमें आपको भगवान के साथ अपने अपने संबंध को निर्माण करने का सुअवसर प्राप्त होता है, और ये भगवान की असीम कृपा है कि उस भगवान ने स्वयं ऋषि का अवतार लिया और निःश्रेयसाय लोकस्य, सबका कल्याण करने के लिए, धन्यम स्वस्त्ययनम महत्, धन्य करने के लिए, पूर्णतया सफल यदि जीवन को करना है, यदि जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या है, इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म समितम। ये केवल श्रीमद् भागवतम महापुराणी है जो आपको आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्रदान कर सकता है। केवल एक नाम देकर बता दिया कि ये पुराण जो है श्रीमद् भागवतम, उसी से आपको वास्तविक जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। स्वस्त्ययनम महत्, और स्वस्थ का क्या मतलब होता है, ऐसे जब हम कोई यज्ञ करते हैं ना तो भी बोलते हैं स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति, कि स्वस्थ का मतलब होता है आनंदमय, आनंद प्राप्त होना। वास्तव में आनंद का अनुभव करोगे आप जब श्रीमद् भागवतम की कथाओं का श्रवण करोगे, और कम्प्लीटली, महत का मतलब होता है परिपूर्ण आनंद, आनंद के अंदर कोई निक्षेप नहीं है, कोई कमी नहीं है, परिपूर्ण है। और भगवान के विषय में जो कुछ भी बताया गया है वो भी कम्प्लीट मात्रा में बताया गया है। इसको पढ़ने के बाद ही हम वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और हम इसके विषय में पहले भी पढ़ा कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से क्या होगा, 1.2.17 में, पहला सिकंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 17 में क्या पढ़ा था, श्रवताम तो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो य भद्राणी विदनोति सुहृत्सा। कि यह भगवान के विषय में जो भागवत महापुराण है उसमें कृष्ण की कथा है, उनको श्रवण करने से क्या होगा, हृदयंतस्थो य भद्राणी, हृदय के अंदर जितने भी अपराध हैं, जितने भी दोष हैं, और जो सबसे बड़ा अभद्र क्या है हृदय का, पदार्थ को भोगने की इच्छा, यानी भौतिक भौतिक वस्तुओं को यूज करके इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है ना वो समाप्त हो जाएगी। फिर क्या इच्छा रहेगी कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, ये पता चल गया है, लेकिन ये इच्छा तब उजागर होती है जब यहाँ पे क्या लिखा, श्रोताम स्वकथा कृष्ण, ऐसी भगवान की कथाओं को सुनने के बाद ही हमारे हृदय के अंदर से भौतिक भोग की इच्छा समाप्त होती है, और विधुनोति सुहृत्सा, यानी कि विधुनोति, भगवान क्या करते हैं, हृदय की गंदगी को आकर जब श्रवण करते हैं भगवान के इस पवित्र ग्रंथ का, तो हृदय के अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं, और अकेले नहीं आते हैं, साफ लेकर आते हैं सफाई की चीजें, और अंदर बैठकर विधुनोति, जैसे धोते हैं अंदर हृदय को, क्लीन करते हैं। श्रवण करने से हृदय पवित्र होता है, हृदय के अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं वो नष्ट हो जाती है, वो भगवान स्वयं करेंगे। हमें क्या करना है, केवल भगवान के इस पवित्र बहुत ही सुंदर इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषु, ये इतना सुंदर भगवान ने ग्रंथ रचा है, उसको केवल श्रवण करना ही सबसे परम भक्ति है। देखो हम बोलते हैं ना, भक्ति में भी अगर हम बोले तो नवधा भक्ति है, लेकिन नवधा भक्ति स्टार्ट कहाँ से होती है, श्रवणम से स्टार्ट होती है। तो फिर यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए, क्या श्रवण किया जाए, तो उस क्या श्रवण किया जाए का उसका उत्तर दिया जा रहा है कि आपको क्या श्रवण करना है, इदम भागवतम पुराणम। देखो और कुछ किम वा पर है ऋषवरे, जब भगवान के विषय में हर कोई ज्ञान आपको इसी के अंदर से मिल रहा है, जब इसके अंदर कोई कहतव नहीं है, आपके हृदय की समस्त ग्रंथियां, आपके हृदय के समस्त कल्पमश और आपके हृदय की समस्त भौतिक इच्छाएं इसी को पढ़ने से समाप्त हो रही हैं, तो फिर केमवा बरे ऋषवरे, तुमको और कुछ पढ़ने की क्या आवश्यकता है, और कुछ श्रवण करने की क्या आवश्यकता है, केवल श्रीमद् भागवतम महापुराण ही पर्याप्त है। और क्या है, इससे क्या होगा, निःश्रेयसाय लोकस्य, निःश्रेयसाय मतलब आप इससे परम कल्याण प्राप्त होगा। तो फिर यहाँ भैया प्रश्न भी उठता है कि और भी तो बहुत सारी चीजें हैं संसार में जिससे हमें लगता है कि हमारा कल्याण होगा, जिससे हम भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, भौतिक अचीवमेंट जब होती है तभी भी तो हम हमारा कल्याण हो रहा होता है। तो परंतु इसका उत्तर देते हुए 1.2.19 में हमें बताया भगवान वेदव्यास जी ने कि ठीक है, भौतिक वस्तुओं से जो आनंद प्राप्त होता है ना, उसमें क्या है, वो आनंद इटरनल नहीं है, वो आनंद टेम्पररी है। लेकिन जो भागवतम जैसे 2.1.18 में हमने क्या पढ़ा, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, यानी कि ऐसा नहीं है कि भागवतम को आप एक दिन पढ़ो दो दिन पढ़ो, ये को नित्य पढ़ने की चीज है, कंटिन्यूअस आपको उसके विषय में पढ़ना है, कोई समय जैसे यानी कि भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में श्रवण करना ही एकमात्र लाभ है, जो जितना भी पॉसिबल है, जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल है हमें भागवतम को समय देना चाहिए। और उससे क्या होगा, आपको इटर्नल शांति, इटर्नल आनंद और परम प्रसन्नता प्राप्त होगी। क्यों, कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि इससे जो भौतिक सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है क्या, ये जो तीन गुणों का चक्कर चलता रहता है ना, कभी रजोगुण में आ जाते हैं, कभी तमोगुण में आ जाते हैं, कभी ना सत्वगुण में आ जाते हैं, और ये हमें बाध्य, ये सारी जंजीरों से बंधन में बंध जाते हैं। तो ये भागवतम श्रवण करने से क्या होगा, श्लोक नंबर 1.2.19 में बताया, तदा रजस्तमो भावो कामलोभादयस्य चेत एतैरनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसीदति, के फिर इसको पढ़ने से जीव हृदय के अंदर भगवान, क्योंकि भगवान क्या भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो क्या होगा, भक्तिर्भवति नैष्टि की, हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न होगी। क्यों उत्पन्न होगी, क्योंकि उससे हमारे हृदय की भौतिक इच्छाएं तो समाप्त हो जाएंगी, फिर भक्ति जब नैष्टि की अंदर आएगी उसके बाद क्या होगा, तदा रजस्तमा भाव, हृदय के अंदर जो रजोगुण और तमोगुण और ये जो भाव है और जो काम है, ये लोभ है, लालच है, हृदय की समस्त अपवित्रता है, वो सब लुप्त हो जाएंगी। फिर क्या होगा, चेत एर नाविद्यम, तो फिर हृदय के अंदर इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं होगा, अनाविद्यम कोई भी गुण जो है वो प्रभावित नहीं करेंगे, और स्थितम सत्वे प्रसीदति, और जब शुद्ध सत्व में जीव स्थित हो जाएगा, क्योंकि दूसरे गुण जब अटैक करते हैं तो फिर क्या होता है, विचलित जीव विचलित हो जाता है, लेकिन जब शुद्ध सत्व में स्थित कैसे होगा, भागवतम नित्य भागवत नित्यम भागवतम सेवता, भागवतम को यदि हम कंटिन्यू श्रवण करेंगे तो फिर हम शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, सत्वे प्रसीदति, सत्व में इस सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे तो फिर परम और इंटरनल आनंद प्राप्त हो जाएगा, और भौतिक आनंद जो है वो कोई हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये केवल भागवत महापुराण के पढ़ने से ही होगा, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि श्रीमद् भागवतम जो है वही समस्त जितना भी हमारा इतिहास है उसकी निर्मल वाणी है और समस्त वैदिक ज्ञान इसके अंदर समाया हुआ है, लेकिन इसको आप किसी से भी नहीं सुन सकते, यानी कि कोई भी अगर आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ाएगा तो ये सारे जो लाभ हैं वो नहीं आपको प्राप्त होंगे। तो इसको श्रवण करने के लिए यहाँ पर एक विधि बताई गई है, श्री प्रभुपाद ने लिखा है कि हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से परब्रह्म कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्त ये कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। यानी कि पारदर्शी का क्या मतलब होता है, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको देखने के लिए हमारी ये जो भौतिक आंखें हैं वो कार्य नहीं करती हैं, जैसे वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, या फिर कुछ लोग की आईसाइट इतनी वीक होती है कि उनको नॉर्मल चीजें देखने के लिए भी ऑप्टिकल यूज करना पड़ता, तो यानी कि उनकी आई जो का पावर जो है वो उसको उसके विजन को वो चीज को सही तरह से नहीं अडॉप्ट कर पाती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपनी आंखों के ऊपर कुछ ऐसी पारदर्शी चीज यानी ऑप्टिकल इस तरह लगाना पड़ता है जिससे उसको साफ साफ नजर आए। उसी तरह क्योंकि हम भौतिक जगत के प्राणी हैं और भौतिक उस वातावरण से गिरे हुए हैं, तो हमें जब तक आध्यात्मिक संग नहीं मिलेगा तब तक हम आध्यात्मिकता को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भले ही शास्त्र हमारे पास है, श्रीमद् भागवतम हमारे पास है, लेकिन जब तक कोई प्रमाणिक गुरु हमें उसके उसके विषय में नहीं बताएगा, पारदर्शी यानी जो वास्तव में उसको देख सकता है, उसका सानिध्य आपको नहीं प्राप्त होगा, तब तक हम श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ सकेंगे। तो फिर ये हमारा परम कल्याण, परम सौभाग्य है कि हम श्रीमद् भागवतम को श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए ऐसे है कि देखो श्लोक लिखे हुए हैं, ठीक है, और उसका अनुवाद भी लिखा होता है। श्लोक से और अनुवाद से हम अच्छी तरीके से तब तक समझ नहीं पाते जब तक कि हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को, उनके भावार्थ को नहीं पढ़ते। और जब हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस श्लोक में भगवान ये कहना चाहते हैं, सुत्ता गोस्वामी ये कहना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य है उन्ही से हमको श्रीमद् भागवतम महापुराण को समझने का प्रयास करना चाहिए। और अगर कृपा कृष्ण की हो जाए और किसी शुद्ध भक्त के विषय मुखाविन से श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, मतलब हमें इच्छा सदैव बनाए रखनी है, हृदय के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, कामना होनी चाहिए कि हमें शुद्ध भक्त के मुखाविन से श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। तो जैसे हमारी इच्छा होती है, भगवान कहते हैं यो याम याम तनुम भक्त है श्रद्धा तुम इच्छति तस्य तस्याचराम श्रद्धाम तामेव विदधामि हम, जो जिस इच्छा से, जिसकी इच्छा जितनी तीव्र होगी तो मैं उसे वैसा फल प्रोवाइड करूंगा। तो हमें इच्छा बनाए रखनी है। और यदि श्री गोपाल जी कहते हैं भागवत व्यक्ति स्वरूप सिद्ध प्रमाणिक गुरु है और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उसी से भागवतम की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तो किसी शुद्ध भक्त से ग्रहण करने की इच्छा रखनी चाहिए और भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से हो जब हम किसी शुद्ध वैष्णव से सुनते हैं। तो जैसे भगवान अगर साक्षात हमारे सामने आ जाए तो कैसे हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण वास्तव में यदि कोई शुद्ध व्यक्ति शुद्ध भक्त होगा उसके मुखारविंद से अगर हम एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का सुनेंगे ना, तो हमारे हृदय के अंदर से भौतिक कामनाएं तो ऐसे समाप्त हो जाएंगी और कृष्ण प्रेम छलछला कर ऊपर आ जाएगा। तो हमारे हृदय में सदैव इच्छा होनी चाहिए कि हमें शुद्ध भक्त के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, या भगवान श्री कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। अगर साक्षात भगवान सामने आए और हमें जो आशीर्वाद दे सकता है केवल श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करने से, वो समस्त इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और समस्त अभद्र नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने ये भी बताया कि जिस तरह से हम ये जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान से भिन्न नहीं है, वो साक्षात भगवान ही है, और हमें श्रीमद् भागवतम की पूजा उसी समान करनी चाहिए जिस तरह से हम भगवान की करते हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बस आप श्रीमद् भागवतम को रख दो और इस तरह से ऑल्टर में उसकी रोजाना पूजा करो, अगरबत्ती करो, और फिर श्रीमद् वास्तव में ये भगवान का साहित्य अवतार है। यानी कि जिस तरह से भगवान को हम कैसे कंटिन्यूज याद रखते हैं कि सुबह होती है फौरन भगवान के विषय में आता है कि अभी भगवान को भोग लगाना है, अभी भगवान को श्रृंगार करना है, अभी भगवान की आरती करनी है, उसी तरह से ये क्योंकि साहित्य अवतार है इसीलिए हमें हमेशा ये मन में रखना है कि भागवतम है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसके श्लोक रिसाइट करने, कंटिन्यू इस तरह से भागवतम की सेवा होती है। जितना जितना हम भागवतम समझने का प्रयास करेंगे और जितना शुद्ध हृदय से हमारी इच्छा बढ़ती जाएगी तो भगवान अवश्य हमें अवसर प्रदान करेंगे कि हम भागवतम को किसी शुद्ध भक्त के जरिए से सुनने का भी मौका अवसर प्रदान करेंगे भगवान। तो हमें हृदय के अंदर सदैव ये इच्छा रखनी है क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई हमारे पास विधि नहीं है और कोई हमारे पास साधन नहीं है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के साथ प्रेम संबंध निर्माण करना है और उसका केवल एक ही तरीका है श्रवण करना। और श्रवण भले हम जितना भी जप कर रहे हैं, जप तो श्रवण करने से ही तीव्र होता है, जबकि अंदर भी यदि हमारी तीव्रता होगी ना, तो वो जितना हम श्रवण करते जाएंगे तभी हमारा जप जो है वो परफेक्ट होता जाएगा। और श्रवण क्या करना है, साफ साफ लिखा यहाँ पर, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, क्योंकि भगवान ने स्वयं साक्षात ऋषि का अवतार लेकर यह भागवतम की रचना की है। क्यों, निःश्रेयसाय लोकस्य, आप सबके लोगों के लिए कल्याण के लिए, धन्यम स्वस्तेनम महत्, वो जो इस शास्त्र को अध्ययन करता है वो उसको बहुत परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, और इटर्नल आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता है और इस भौतिक जगत में उसको कभी आना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भगवान के विषय में जानेंगे तभी, तो फिर यह समस्त कल्याण करने वाला, समस्त वर प्रदान करने वाला, समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला, और कृष्ण के साथ आपके प्रेम को निर्माण करने वाला, हृदय के अंदर की समस्त गंदगी, समस्त भौतिक गुणों का प्रभाव समाप्त करने वाला ग्रंथ है। और हमारा ये परम सौभाग्य है कि भगवान ने हमें यह अवसर प्रदान किया है कि हम इसको श्रवण कर रहे हैं, इसको अध्ययन कर रहे हैं। और आप सबसे यही प्रार्थना है कि कृपया हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, स्पेशली मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं इतनी शुद्ध भक्त नहीं हूँ कि मैं ना इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं आप सबको पढ़ा बता सकूँ श्रीमद् भागवतम। बस जो लिखा हुआ है एज इट इज बताने का प्रयास करती हूँ। हृदय के अंदर कोई इच्छा नहीं है कि मैं भी सेंटर में आऊँ, बस श्रील प्रभुपाद जी हों और जो भागवतम के श्लोक हो उनको एज इट इज बस पढ़ने का जैसे हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब कृपया साथ रहिएगा और अपनी प्रार्थना जल्दी कीजिएगा कि मैं इस सेवा को अच्छे से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।